श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
संकट हरणा श्री साई रमणा,
संकट हरणा श्री साई रमणा,
संकट हरणा श्री साई रमणा,
संकट
पंकज चरणा नमो नमो,
पंकज चरणा नमो नमो,
पंकज चरणा नमो नमो,
पंकज चरणा नमो नमो।
मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उतानपाद। उतानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनुति। सुरुचि का एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम, और सुनुति का जो पुत्र था उसका नाम था ध्रुव। कहा जाता है जीव मात्र उतानपाद है। माता के गर्भ में रहने वाला उतानपाद है। जन्म में पहले सर फिर पांव बाहर आते हैं, उल्टे बाहर आते हैं, इसको भी उतानपाद कहा जाता है। उत्तानपाद के दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का अर्थ है जो आपको प्रिय लगे, जो आपको सुंदर लगे, जो आपको प्यारा लगे। केवल इतना नहीं, जिसमें आपकी रुचि बनी रहे, जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे, जिसमें आपका ध्यान बंटा रहे। हम कहते नहीं है आपकी किस चीज में रुचि है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आदि आदि। कभी आपने विचार किया कि संसार में जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान की कोई ना कोई चीज में रुचि बनी रहती है, इंटरेस्ट बना रहता है, या इच्छाएं, जो इच्छाएं जो हैं आपकी रुचि बनाए रखती हैं। सुनीति जो उत्तान पद की दूसरी पत्नी, सुनीति, नीति का क्या मतलब हुआ? ध्यान दीजिएगा, जिससे हो सकता है हमें प्रेम ना हो लेकिन नीतिवर है, सही है। कई बार क्या होता है, जो बातें सच होती हैं, जो सही होती हैं, हमें उससे प्रेम ना हो हमें छीन लगती, लेकिन बातें झूठी हो लेकिन अच्छी लग जाती हैं क्योंकि आपकी प्रशंसा झूठी की जा रही है। कभी आपने विचार किया, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है झूठ में, कहते हैं झूठ मूठ बोल रहे हैं, लोग कहते हैं आपको पेड़ पे चला रहे हैं, कोई कहते हैं आपको पुदीने के पेड़ पे चला रहे हैं। पुदीने का पेड़ हालांकि नहीं होता है, कहने का तात्पर्य है आप चढ़ेंगे ऊपर गिर जाएंगे, लेकिन जो आपसे मीठी मीठी बातें करें आपको अच्छी लगती हैं और आप ये जानते हैं कि अगला बंदा झूठ बोल रहा है, तब भी आपको बातें प्रिय लगती हैं, आपकी रुचि बनी रहती है, आप उन बातों को बारंबार सुनना चाहते हैं। व्हाट फॉर, किस लिए? क्योंकि हमारे अहंकार को हवा मिलती है। एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, सुरुचि भी उनके साथ बैठी थी। उनका पुत्र उत्तम राजा की गोद में बैठा हुआ खेल रहा था। अचानक वहां पर सुनीति का पुत्र ध्रुव भी भागता हुआ आया और अपने पिता में की गोद में बैठने की जिद करने लग गया। ध्रुव मनन का प्रतीक है, राजा जीवात्मा का प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा, उत्तानपाद एक जीव का प्रतीक है, सुरुचि आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर, आपकी रुचियां उनका प्रतीक है, सुनीति सत्य का प्रतीक है। सत्य का पुत्र है ध्रुव, जो मनन का, कंटेम्पलेशन का प्रतीक है। यहां पर सुरुचि ने ध्रुव को अपने पिता की गोद पे नहीं बैठने दिया, बल्कि उसको दुत्कार दिया। ध्रुव बेचारा मायूस होकर अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। अब जरा आप कल्पना कीजिए, अगर कोई आपके बच्चे को मायूस करे, डांटे, फटकारे उस बात से जिस बात पे आपके बच्चे का अधिकार है, राइट है, तो आप क्या करेंगे? आपको खराब लगेगा, आप क्रोध में आ सकते हैं। आपके बच्चे को कोई उसका अधिकार ना दे, उसको डांट के पिता से अलग कर दें, आप कह सकते हैं पुत्र का अधिकार है। यहां पर सुनीति चाहती तो जाके सुरुचि के साथ झगड़ा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने मायूस पुत्र ध्रुव को इतना बोला, बेटा तेरे असली पिता तो नारायण है, तुम उनको पुकारो। विचार कीजिएगा, एक संदेश मिलता है यहां पर हमारे को, जब आपके जीवन में सब चीजें आपके मन के अनुसार ना चल रही हों, इसका मतलब है कोई पूर्व जन्म का कर्म ऐसा है जो आगे आके बाधा बन गया है, आड़े आ रहा है, या आपके जीवन में आपको कोई कष्ट आ रहा हो, कोई दुविधा हो रही हो, कोई समस्या हो रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप ये सोच सकते हैं पिछले जन्म के कोई कर्म सामने आए हैं, कोई खराब कर्म सामने आए हैं, इसका मतलब है अब समय आ गया है, अच्छे कर्म कर लो, अब समय आ गया है, संभल जाओ, अपना ध्यान अच्छे कर्मों की ओर मोड़ दो। यही बात माता सुनीति ने ध्रुव को समझाई, बेटा यहां पिताजी तुम्हें गोद में नहीं बिठा रहे, कोई बात नहीं, तुम्हारा असली पिता तो नारायण है, उनको पुकारो। उस समय ध्रुव की उम्र रही होगी कोई 4-5 वर्ष की। मां ने अपने बच्चे के अपमान होने पर भी अपमान का बदला लेने के लिए नहीं कहा, ना समय बदला लेने गई, बल्कि अपने बच्चे को सही रास्ते की ओर मोड़ा। ये समय है बेटा भगवान का नाम जप, ये समय है बेटा भगवान को पुकार। कभी आपने सोचा कि जब आप दर्द में होते हैं, जब दुख में होते हैं, जब पीड़ा में होते हैं, जब समस्या में होते हैं, जब प्रॉब्लम्स में होते हैं, तब आपके मुख से, आपके हृदय से परमात्मा के लिए चित्कार निकलती है। कहते नहीं है ये कॉलिंग फ्रॉम द हार्ट, दिल से पुकारते हैं। जरा विचार कीजिएगा, हम परमात्मा से मांगते क्या हैं? अचानक के बात ध्यान में आ गई है। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि मैंने दुनिया बनाई है, मानव बनाया है, मानव बड़ा परेशान है, दुखी है, मुझे चाहिए कि मैं धरती में जाके उनकी सहायता करूं। कहते हैं भगवान अयोध्या में आके बैठ गया, कहानी बनाई हुई है, भगवान आके बैठ गया। यहां पर राम भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, एक कहानी बता रहे हैं आपको। भगवान अयोध्या में आके बैठ गए, धीरे धीरे आग की तरह बात फैल गई कि परमात्मा नारायण भगवान विष्णु स्वयं यहां पधारे हुए हैं, सुबह दर्शन देंगे। रातों रात आग की तरह बात फैल गई शहर में, देखा बाहर, घर के बाहर लोगों का तांता लग गया, भीड़ भीड़। सुबह नारायण ने अपना दरवाजा खोला, देखा वाओ, इतने लोग मुझे मिलने आए हैं, इतने लोग मुझे चाहते हैं, पसंद करते हैं, मैं दर्शन करना चाहते हैं, शायद इसलिए आए हैं। लेकिन नारायण ने एक एक करके सबको अपने पास बुलाया बात करने के लिए। सब लोगों ने एक से लेकर अंत तक, अंतिम प्राणी तक, सभी लोगों ने अपनी समस्याएं भगवान विष्णु के सामने रख दी। किसी ने बोला मेरा पुत्र नहीं है, किसी ने कहा मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरा व्यवसाय नहीं चलता, मेरा व्यापार नहीं चलता, मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिल रही, अच्छा पति नहीं मिल रहा, आदि आदि। किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मैं आपको चाहता हूं। भगवान को लगा शायद जहां पर लोग ज्यादा पीड़ित हैं, समस्याओं को हल किया, दूसरे शहर में चले गए, मान लेते हैं मथुरा में पहुंच गया। यहां पर हम भगवान कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं, एक कहानी बता रहे हैं। रातों रात यहां पर बात फैल गई कि भगवान विष्णु यहां पधारे हुए हैं, रातों रात लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, सुबह भगवान विष्णु देखा भाई इतने लोग खड़े हैं, सबको बारी बारी बुलाया, वही पुरानी कहानी, मानव अपनी समस्याओं को लेके बैठ गया, अपना रोना पीटना बैठ गया। इसलिए भगवान बाबा हमेशा कहते रहे हैं, आई गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट सो दैट वन डे यू मे वॉन्ट वट आई वॉन्ट टू गिव यू। मैं तुम्हें देता हूं जो तुम चाहते हो, ताकि एक दिन शायद तुम वो चाहो जो मैं तुम्हें देने आया हूं। हम चाहते क्या परमात्मा से? केवल इच्छाओं की सूची, द लिस्ट ऑफ डिजायर्स हम रख देते हैं, उसे कहा गया सुरुचि। तो हमारी पत्नी कौन है? सुरुचि। जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं, हम कह सकते हैं हमारी पत्नी सुरुचि है, सुनीति नहीं, जो सत्य के मार्ग में, सही मार्ग में आगे लेकर जा रही हो। जबकि सुनीति अगर ध्यान से सोचा जाए आपकी बुद्धि है, डिस्क्रिमिनेशन पावर, इंटेलेक्ट। लेकिन हमने कितनी बार अपनी बुद्धि से पूछा है भाई, कितनी बार हमने अपनी बुद्धि से विचार विमर्श किया है, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, ये सही है या गलत। हमने केवल बात सुनी है सुरुचि की, जो हमारा मन है, मन क्या है, द बंडल ऑफ डिजायर, इच्छाओं की गुत्थी। हमारी दो पत्नियां हो गई ना, मन और बुद्धि, सुरुचि और सुनीति। विचार कीजिएगा, हम यहां क्या करते हैं? अगर हमारा बच्चा दुखी हो जाए, मायूस हो जाए, नाराज हो जाए, हम क्या करेंगे? बच्चे का मन बहलाने के लिए उसको बाहर ले जाएंगे। और आजकल के जमाने में बच्चों को कहां ले जाते हैं? चलो बेटा तुम्हें मूवी दिखा के लाए, जाओ बेटा बैठ के टीवी देखो, वीडियो गेम खेलो, कंप्यूटर में खेलो। कितनी बार हमने ये बोला है बच्चों को कि बच्चों चलो अपना ध्यान परमात्मा की ओर मोड़ दो। शायद कभी। यहां ध्रुव 4-5 साल का था और वन क्यों चल पड़ा। रास्ते में उन्हें मिले नारद जी। नारद जी ने कहा बेटा तू इतनी छोटी उम्र में कहां जा रहा तपस्या करने, बेटा जा एंजॉय योर लाइफ, आनंद मना। परंतु ध्रुव नहीं माना, उससे अपनी माता सुनीति की बात ध्यान में आई। ब्लिक ध्रुव ने नारद जी से पूछा कि मुझे किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, हाउ टू डू प्रेयर्स, हाउ डू आई प्रे, मैं कैसे नारायण को प्रसन्न करूं। कहते हैं नारद मुनि ने उन्हें वृंदावन के मधुवन की ओर भेज दिया और तरीका बताया किस प्रकार से तुम परमात्मा को पुकारो, किस प्रकार से प्रार्थना करो। पहले कहा कि मानसी सेवा करो, अपने मन से केवल परमात्मा की सेवा करो, ध्यान रहे मन की धारा ना टूटे, जप करना लेकिन ध्यान सहित, ध्यान हटा के नहीं। जब हम कभी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, खाली हमारे होंठ, हमारी जीभ, हमारे लिप्स चल रहे होते हैं। या नारद जी कह रहे हैं बेटा मन से परमात्मा की सेवा करना, मन से, मानसिक तरीके से, और हमारे ध्यान की धारा टूटनी नहीं चाहिए, और जब करते हुए सारा ध्यान परमात्मा में होना चाहिए। और उन्हें एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कभी आपने सोचा स्नान करते हैं नित्य, आप क्यों करते हैं? स्नान करने से आपके शरीर की शुद्धि होती है, उसी प्रकार दान करने से आपके धन की शुद्धि होती है। ना जाने आपने धन कमाया उसके पीछे किसी गरीब के आंसू हो, किसी गरीब का खून हो, किसी गरीब का पसीना हो। तन शुद्ध होता है स्नान करने से, धन शुद्ध होता है दान करने से, और मन शुद्ध होता है ध्यान करने से। कहा कहा जाता है पिछले जन्म में ध्रुव तपस्या कर रहे थे, केवल 6 महीने की तपस्या रह गई थी जब उनके परमात्मा के दर्शन होने थे। तो एक बार एक राजा और रानी ध्रुव को मिलने के लिए आए। ध्रुव तपस्वी थे, उन्होंने देखा राजा रानी को, मन में भावना जाग उठी, वाह व्हाट ए कंफर्टेबल लाइफ दे आर लिविंग, कितने आराम का जीवन गुजार रहे हैं ये लोग, कितना सुख जीवन इनका है। वो एक थॉट, वो एक विचार उनको दोबारा जन्म लेने के लिए बाध्य कर गया। कभी आपने सोचा हम कितने विचार लेके आते हैं शुभ और अशुभ मन के अंदर? ये सारे विचार हमें आने वाले जन्मों की ओर संकेत कर रहे हैं। आज जो भी आप मन में सोच रहे हैं वो आगे हो सकता है, आपको घट सकता है। इसका मतलब आप जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यू आस्किंग गॉड फॉर मोर टाइम, आप भगवान से समय मांग रहे हैं और जन्म मांग रहे हैं। यू आस्किंग फॉर मोर लाइव, नॉट लाइफ, लाइव। एक जन्म नहीं, कई जन्म मांग रहे हैं। एक भावना आई, राजा रानी कितने सुखी आनंद का जीवन बता रहे हैं, वही भावना ने उनको दोबारा जन्म दे दिया। अब फिर तपस्या करने के लिए 4-5 साल की उम्र में, कहते हैं ध्रुव ने 6 महीने तप किया। पहले दिन तो उन्हें व्रत रखा, फिर 3 दिन तक आसन पर बैठे रहे, ध्यान लगाते रहे, केवल फल खाते रहे। फिर 6 दिन तक उन्होंने ध्यान लगाया, खाली पत्ते खाए। फिर उसके बाद केवल 9-12 दिन तक तपस्या करी, खाली जल पिया। फिर 15 दिन तपस्या कर सब कुछ छोड़ दिया। फिर उसके बाद एकदम से केवल भगवान के ध्यान में बैठ गया, ना पत्ते खाए, ना जल खाए, ना फ्रूट खाए, ना फल खाए, ना कुछ नहीं किया, केवल बैठे रहे ध्यान पे। जब 6 महीने की तपस्या पूरी हो गई, ध्यान दीजिएगा, पिछले जन्म में 6 महीने की तपस्या रह गई थी, इस जन्म में जैसे ही 6 महीने की तपस्या पूरी हुई, भगवान दौड़े दौड़े आए। लोगों ने कहा परमात्मा नारायण भगवान आप कहां जा रहे हो, ध्रुव को दर्शन देने? बोले नहीं, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, उसके दर्शन करने जा रहा हूं। कोई ऐसा भक्त भी हो सकता है, विचार कीजिएगा। नारायण प्रकट हो गए लेकिन ध्रुव समाधि में लीन थे। थोड़ी देर के बाद आए, बोले भैया मुझे कब तक इंतजार करवाओगे, कब तक खड़ा हूं मैं, उठो। उसको स्पर्श किया, ध्रुव उनके चरणों पर गिर पड़े। बोले पुत्र तू जो चाहे मांग ले। ध्रुव बोला जैसी आपकी इच्छा। नारायण बोले तू राजा बन जा, राज कर, उसके बाद तुझे मैं अपने धाम में ले जाऊंगा। ध्रुव बोला अगर राज करूंगा तो मेरे अंदर इच्छाएं आ जाएंगी, डिजायर्स आ जाएंगे, आई विल गेट कॉट अप, मुझे नहीं चाहिए। नारायण बोले ध्रुव तुम्हें कोई इच्छा नहीं सताएगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहते हैं ध्रुव ने काफी समय तक राज किया, उसके बाद गंगा किनारे बैठ के भजन कीर्तन करने लग गया। कहते हैं गंगा द हिमालय की गोद से कल कल करती हुई बहती हुई नीचे समतल पे आती है, प्लेन्स में आती है। जब ऊपर का पानी नीचे गिरता है पहाड़ों से तो आवाज करता है। ध्रुव गंगा किनारे बैठ के ध्यान लगा रहे थे, तपस्या करते थे, भजन कीर्तन करते थे। एक दिन बोले भाई मैं यहां नहीं बैठ सकता हूं, यहां पर गंगा का पानी बड़ा शोर करता है, मैं यहां से छोड़ के कहीं और जाके तपस्या करूंगा। कहते हैं कि गंगा माता उनके सामने प्रकट होगी, बोले तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे भजन तुम्हारा कीर्तन मैं नित्य सुनती हूं। आज मैं आपसे ये बात कह दूं कि आज के बाद यहां पर गंगा का जल आवाज नहीं करेगा। आप जानते हैं ये कौन सा स्थान है? इस स्थान का नाम है ऋषिकेश। यहां भागीरथी गंगा गंगोत्री से गोमुख से निकलते हुए ही पहाड़ों के रास्ते से कल कल करती हुई जब धरती पर आती है, समातल पे आती है, पानी जोर का गिरता है लेकिन आवाज नहीं करता। ऋषिकेश में गंगा की बहने का आवाज नहीं है, आवाज उसकी आवाज नहीं है। इसलिए ऋषिकेश में कहा जाता है ध्रुव आश्रम बन गया। विचार कीजिएगा, ध्रुव ने बालपन में भक्ति की ओर अपने पांव मोड़े। कहते हैं बच्चों के पांव चंचल होते हैं। आप कहीं मंदिर में जाइए, कहीं पार्टी में जाइए, बच्चा कभी एक जगह टिक के नहीं बैठता, हिलता डुलता रहेगा, भागता रहेगा, दो मिनट बैठेगा फिर भाग जाएगा, क्योंकि बच्चों के पांव चंचल होते हैं, इतनी ऊर्जा होती है, इतनी एनर्जी होती है, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जवान होता है, कहते हैं जवानी में रोम रोम चंचल होता है। आप देख लीजिए टीनेजर्स को, आप देख लीजिए जवान लड़के लड़कियों को क्या करते हैं। सिटी में घूम रहे होंगे, सिनेमा हॉल भरे होंगे, डिस्को में होंगे, क्लब में होंगे, सारे कॉन्सर्ट में होंगे, सारे शोज में होंगे, कभी टिक के एक मिनट नहीं बैठते हैं। रोम रोम चंचल है, दे वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, सब चीज का अनुभव चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, विदाउट डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं मालूम उनको। बुढ़ापे में जुबान चंचल, जब बुढ़ापा आ जाता है शरीर से तो आदमी काम नहीं कर पाता, बूढ़ा हो गया है, लेकिन जुबान टें 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 करती रहती है। हमारे जमाने में ऐसा होता था, तुम लोग ये बात नहीं करते, वो बात नहीं लगते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, हो यहां की बात वहां, वहां की बात वहां। बचपन में पांव चंचल, जवानी में रोम रोम चंचल, बुढ़ापे में जुबान चंचल। तीनों को चाहिए दिशा, तीनों को चाहिए डायरेक्शन। अगर बचपन में आपने बच्चों को डायरेक्शन नहीं दी, दिशा नहीं दी, जवानी में खाक दे पाएंगे आप, और बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा, फिर परमात्मा के दर्शन कहां और कैसे हो पाएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, विचार कीजिएगा, सोचिएगा किस प्रकार से हम अपने बच्चों को सुनीति के पुत्र बनाएं, अर्थात हम स्वयं सुनीति बने। अच्छा हो कि हम अपने आप में सुधार लाएं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और बच्चों के अंदर ये गुण डालें कि वह भी अपनी बुद्धि की आवाज को, अपनी इनर वॉइस को, इनर कॉन्शियसनेस को सुन पाएं, समझ पाएं, उसके बताए हुए रास्ते पे चल पाएं। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, आध्यात्मिकता का अर्थ है कि आपके अंदर इतना साहस हो, इतनी दृढ़ता हो कि आप अपने अंतर की वाणी को सुनकर उसके बताए हुए रास्ते पे सदैव चल पाए। विचार कीजिएगा, फिर यहां से आगे मिलेंगे अगले सप्ताह। जय श्री साधु।
संकट हरणा श्री साई रमणा,
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 पंकज चरणा नमो नमो,
पंकज
जय चरण।